जीवन एक गोरख धंधा है। ऑडिबल की विशेष प्रस्तुति ओम स्वामी के विचार, ओम स्वामी की आवाज में। कहीं फुंकारते दरिया, कहीं खामोश पहाड़, कहीं जंगल, कहीं सहरा, कहीं गुलशन देखूं। खून रुलाता है ये तकसीम का अंदाज मुझे, कोई धनवान यहां पर कोई निर्धन देखूं। दिन के हाथों में फकत एक सुलगता सूरज, रात की मांग सितारों से मुजयन देखूं। कहीं मुरझाए हुए फूल हैं सच्चाई के, और कहीं झूठ के कांटों पे भी जोबन देखूं। शम्स की खाल कहीं खिंचती नजर आती है, कहीं सरमद की उतरती हुई गर्दन देखूं। रात का शहर सवेरा क्या है, ये उजाला ये अंधेरा क्या है। मैं भी नाइब हूं तुम्हारा, आखिर क्यों ये कहते हो कि तेरा क्या है। हैरत की एक दुनिया हो, तुम एक गोरख धंधा हो।
तो मैं आपको एक बड़ी सुंदर बात बताता हूं। हमने विचार किया कि अविद्या से मनुष्य जरा और मृत्यु की ओर जाता हुआ निरंतर पुनर्जन्म में गिरता है, और प्रश्न ये होता है कि फिर कैसे इस गोरख धंधे से बाहर आया जाए। कहते हैं एक पंडित जी होते थे, 1000 रुपए लेते थे और 3 ही प्रश्नों का उत्तर देते थे। एक बार यदि किसी की जन्म कुंडली देखते थे तो उनका नियम था केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो व्यक्ति जन्म कुंडली लेकर चले जाता है। यजमान बोलता है कि महाराज, क्या ये सच है कि आप 1000 रुपए में 3 ही प्रश्नों का उत्तर देते हैं? उसने कहा, महोदय बिल्कुल सत्य है। आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा है? नहीं, अब तीसरा प्रश्न पूछ लो। पंडित ने कहा, 2 हो गए हैं, अभी तीसरा प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। कभी भी इस बात का स्मरण रहे, जब आप दुखी होगे ना, प्रश्न उत्तर करने से, स्वयं के साथ प्रश्न उत्तर करने से कभी भी मन को सांत्वना नहीं मिल सकता। कभी भी इसको अजमा कर देख लेना। यदि दुखी हैं, जो कि शायद प्रतिदिन होता होगा, यदि दुखी हैं और विषादग्रस्त हैं, चाहे साल में एक बार, चाहे सिर्फ एनिवर्सरी पर, या जैसे भी, मतलब अपनी वो बर्थ एनिवर्सरी, मान लो सालगिरह के आधार पर साल में एक ही बार मान लीजिए आप होते हो, जैसा भी कहा जाए, या 6 महीने में या महीने में या जो भी, कभी आप देख लेना, जब हम दुखी होते हैं उस समय यदि प्रश्नोत्तर करेंगे तो कभी मन शांत नहीं होता, और दुखी होता है और जोर जोर से बोलता है। उस समय मनुष्य को अपना जो मन होता है, जो ध्यान होता है, वो कहीं और लगाना आना चाहिए। जो अपने मन को परिवर्तित करना सीख जाए वो व्यक्ति दुखी बहुत कम होगा। परंतु जिस समय दुखी है उस समय नहीं सीख सकते, उस समय नहीं कह सकते कि चलो मिलियन थॉट्स उठा के पढ़ता हूं या माइंडफुल टू माइंडफुल पढ़ता हूं या कोई प्रवचन सुन लेता हूं या ध्यान में बैठ जाता हूं या भजन कीर्तन कर लेता हूं। उस समय आपको सब कोई बुरे लगेंगे, किसी से कोई सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रश्नोत्तर से नहीं होता इसका समाधान। वो एक बड़ी महंगी प्रक्रिया है, 1000 रुपए के तीन प्रश्न हैं और कम पड़ते हैं। तो जो व्यक्ति जीवन के एक मूल रहस्य को समझ गया वो उत्तरोत्तर सुखी होता चला जाएगा, वो शनै शनै और दृढ़ और बलवान और सुखी और आनंदित होता चला जाएगा। क्या है वो रहस्य? बड़ा सरल है कि भिन्नता का नाम ही जीवन है। सब दिन एक समान नहीं हो सकते। जो भिन्नता है वही जीवन को सुंदर बनाती है। आज कुछ और देखने को मिला, कल कुछ और देखने को मिलेगा, परसों कुछ और देखने को मिलेगा। पत्थर होते हैं जो जल्दी नहीं बदलते, जो वृक्ष होते हैं, जितनी भी जीवित चीजें हैं, जितनी भी चराचर जगत में जीवित वस्तुएं हैं, वो निरंतर परिवर्तित हो रही हैं। जो मृत है वो स्वयं से परिवर्तित नहीं हो रहा, पत्थर तो वहीं पड़ा हुआ है, परंतु नदी बह रही है, फूल खिल रहे हैं, नए नए पत्ते जो हैं वृक्षों पर आ रहे हैं, झड़ रहे हैं, पतझड़ के बाद फिर एक शरद ऋतु आ रही है, फिर बसंत आ रही है, फिर दोबारा से प्रकृति जो है हरी और विभिन्न रंगों से भर रही है। भिन्नता का नाम ही जीवन है। कोई ऐसा अपने जीवन के साथ वो नहीं किया हुआ है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया हुआ है, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसके ऊपर हमने हस्ताक्षर किए हों या ईश्वर ने कर दिए हों कि सारा जीवन आपको ये दूंगा, कि सारा जीवन जो है सुखी रहोगे, या सारा जीवन स्थिति या परिस्थिति हमेशा आपके अनुकूल रहेगी। कहीं तो ऐसा नहीं लिखा हुआ, ऐसा हमने मान लिया, उसी के कारण दुखी हैं। पत्नी ने मैंने सुना आलू के पराठे बनाए, अब थकी हुई थी, चिड़ी हुई थी, थोड़ा सा उसने बना के रख दिए। पति ने कहा ये क्या है, आलू इसमें एक नहीं दिख रहा, ये आलू के पराठे बोलते हैं इसको, सूखे पड़े अंदर से, आलू इसमें है नहीं है, चुपचाप खा लो। पत्नी ने बोला तुम्हें बना के दिए हैं, कश्मीरी पुलाव में तुम्हें बड़ा कश्मीर दिखता है क्या? आलू के पराठों में आलू ढूंढ रहे हो, हैदराबादी बिरयानी में क्या हैदराबाद दिखता है? ये नाम रखे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें आलू होगा ही होगा। तो जरूरी नहीं कि जो सुख की अवस्थाओं में जिस सुख के वायदे हुए पड़े हैं वो आपको मिलेंगे ही, उसको निकालना पड़ता है। नहीं, जिस दिन आलू आया कोई बात नहीं, अचार के साथ खा लो, शिकायत मत करो, शिकायत करने का अधिकार केवल संतों को है। मजाक कर रहा हूं। तो देखो कितने सुंदर आपको बात सुनाता हूं कि दुनिया यदि गोरख धंधा है, जीवन यदि एक गोरख धंधा है, तो क्या इसका चित्र क्या है? क्या अगर चित्र पेश किया जाए, कुछ शब्दों में बयान किया जाए तो क्या है? कहीं फुंकारते दरिया, कहीं खामोश पहाड़, कहीं जंगल, कहीं सहरा, कहीं गुलशन देखूं, खून रुलाता है ये तकसीम का अंदाज मुझे, कोई धनवान यहां पर तो कोई निर्धन देखूं, दिन के हाथों में फकत एक सुलगता सूरज, रात की मांग सितारों से मुजयन देखूं, कहीं मुरझाए हुए फूल हैं सच्चाई के, और कहीं झूठ के कांटों पे भी जौबन देखूं, शम्स की खाल कहीं खिंचती नजर आती है, कहीं सरमद की उतरती हुई गर्दन देखूं, रात का शय सवेरा क्या है, ये उजाला ये अंधेरा क्या है, मैं भी नाइब हूं तुम्हारा, आखिर क्यों ये कहते हो कि तेरा क्या है। तुम एक गोरख धंधा हो जिस इतने सुंदर पृथ्वी पर, यदि आप यहां पर प्रसन्न नहीं रह सकते तो फिर कहां रहेंगे। विचार करने वाली बात है। आज साइंस जो है, विज्ञान, कहां कहां नहीं उन्होंने अपने जहाज भेज दिए देखने के लिए, 1,000, 1,00,000, 10,00,000, 1,00,00,000, वो दूरबीन से इतनी इतनी दूर तक देख लिया, कहीं जीवन का निशान ना मिला, कहीं इतना सुंदर उनको पृथ्वी जितना सुंदर ग्रह ना मिला। सब जगह निर्जीव, हम पत्थर की बात कर रहे थे ना, बस वही पत्थर पत्थर मिट्टी, पत्थर पत्थर मिट्टी, कहीं हरियाली नहीं, कहीं पेड़ नहीं, कहीं ऐसे सुंदर पर्वत नहीं, कहीं बहती हुई नदी नहीं, कहीं जलचर थलचर नवचर कहीं नहीं। इतने अद्वितीय, इतने एक अद्भुत ग्रह पर आकर भी यदि शिकायत ही की तो क्या कमाया ना। तो जो व्यक्ति इस बात को धारण कर लेता है कि भिन्नता का नाम ही जीवन है, जिस दिन खुश ना हो ना, उस दिन अपने आप को याद करवा दो, कोई बात नहीं, आज अलग दिन है, कल ठीक हो जाएगा। कल ना ठीक हो तो अपने आप को याद कराओ, कोई बात नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूं कल जो मैंने सोचा गलत था, वो शायद कल ठीक हो जाएगा। कहते हैं, एक ऐसा मेरा बताने का विचार नहीं था पर स्मरण में आ गया तो आपसे कह देता हूं। एक व्यक्ति होता है पति, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और जिस दिन उसका दाह संस्कार होता है, वो जैसे ही संस्कार खत्म होता है और थोड़ी देर बाद बादल आने शुरू हो जाते हैं, सब सोचते हैं कि चिता पूरी पहले हो जाए ठीक ठाक, उसके बाद चाहे बारिश हो जाए, और इतना भयंकर ढंग से बिजली कड़कती है, पति बोलता है पहुंच गई पहुंच गई ऊपर, वो ठीक ठाक पहुंच गई। जैसे ऑस्कर वाइल्ड ने बोला था ना, कुछ लोग जब जाते हैं, जहां भी जाते हैं, कुछ लोग चलो आप ठीक है हंस लीजिए, कुछ ऐसे बात नहीं, कुछ लोग जहां भी जाते हैं वो जगह खुशियों से भर जाती है, कुछ लोग जब भी जाते हैं वो जगह जो है खुशियों से भर जाती है, जहां भी जाने से और जब भी जाने से अंतर पता कितना है, सिर्फ और सिर्फ व्यवहार का सिर्फ व्यवहार। ऐसा नहीं कि सबको आपका धन चाहिए, अगर है तो ही देंगे वैसे तो, पर अगर है तो शायद ले लेंगे, पर व्यवहार सबसे बड़ा मनुष्य का आभूषण होता है। और समता का व्यवहार मनुष्य में तब तक नहीं आ सकता जब तक उसमें समता का विचार ना हो, और समता का विचार मनुष्य में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि वो अंतर्मुखी ना हो, और अंतर्मुखी मनुष्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके हृदय में संतोष ना हो, और व्यक्ति संतुष्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो कृतज्ञ ना हो। अगर मैं कृतार्थ हूं, अगर मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन में ये मुझे मिला है, ये पर्याप्त है, श्रेष्ठ है, तो मैं संतुष्ट हूं, अन्यथा संतुष्टि संभव नहीं। एक तृष्णा जो कहा है बुद्ध ने, वो मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। कहीं ना कहीं श्री राम के जीवन में भी यदि वो एक मृग के पीछे गए, उसी से शब्द निकला मृग तृष्णा, कि मां जानकी ने बोला नहीं स्वर्ण का हो सकता है, जाकर देख लीजिए, इतना अद्भुत जीव जंगल में देखना है मुझे। तृष्णा जब आ जाती है तो मनुष्य एक ऐसे रेगिस्तान में निकल पड़ता है जहां कभी भी उसको झरना नहीं मिलेगा, नदी नहीं मिलेगी, एक नखली स्थान तो मिल जाएगा। कितने समय के लिए वो रहेगा कोई नहीं कह सकता, परंतु वो शुद्ध जल का झरना नहीं मिलने वाला उसको, क्योंकि उसका वो धर्म ही नहीं है। कहते हैं एक राजा था, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को वो अपनी सभा में बुलाता था, 3-4 घंटे उनको सुनता, फिर कहता मजा नहीं आया, फिर वो उसमें नुक्ताचीनी करता, नुक्स निकालता। पर ऐसा कैसे हो सकता है धर्म में, वैसा कैसे हो सकता है? अच्छा, हनुमान जी बोलते थे मनुष्य की भांति, कैसे हो सकता है? वानर कैसे उड़ सकता है? जटायु से कैसे बात कर ली? कृष्ण पानी के नीचे कैसे चले गए द्वारिका में? इत्यादि इत्यादि हर जगह उसको कमियां दिखती, हर धर्म में, हर ऋषि में, हर मुनि में, हर गुरु में। तो राजा ने यह तय कर लिया कि ऐसा कोई धर्म नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण हो। एक संत उस राजदरबार में जाते हैं तो राजा से कहते हैं कि मैं भिक्षा के लिए आया हूं, परंतु मेरा धर्म है कि मैं अपने धर्म की बात बोलकर ही भिक्षा लेता हूं, ऐसे निशुल्क मुफ्त में नहीं लेता। तो राजा ने कहा कि मेरा किसी धर्म पर विश्वास है नहीं, मुझे आज तक कोई ऐसा धर्म नहीं मिला जो अपने आप में संपूर्ण हो, परिपक्व हो, पूर्ण हो। अगर तो ऐसा धर्म है तो मुझे उसका ज्ञान देना, नहीं तो मेरा समय मत बर्बाद करना। उसने बोला, महाराज संयोगवश मेरे पास बिल्कुल वैसा ही धर्म है जैसा आप कह रहे हैं, मेरे पास ऐसा धर्म है जिसमें कोई कमी नहीं है, परंतु वो उसको मैं आपको राजदरबार में नहीं दिखा सकता, आपके राजमहल के 4 कोस दूर जो एक नदी बह रही है उसके पार आपको मुझे लेके जाना होगा, वहां एकांत में मैं आपको बता सकता हूं। तो राजा ने कहा ठीक है, तैयारी की जाए, मैं आपके साथ चलता हूं, उस तरफ जाकर मैं उस ज्ञान को पाने का इच्छुक हूं। तो एक कश्ती जो है वो लाई जाती है। तो संत कहते मेरी एक ही शर्त है कि मैं हर कश्ती का पूरा निरीक्षण करूंगा पहले, अगर मुझे ये उचित लगी, ठीक लगी, तब मैं नदी के पार जाऊंगा, नहीं तो नहीं। राजनकश अवश्य, कोई आपत्ति नहीं मुझे उसमें। तो कश्ती आती है, वो देखते हैं, राजन इसमें नहीं जा सकता, ये देखो यहां से इसका रंग उतरा हुआ है, ये मुझे गवारा नहीं है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत कश्तियां हैं। एक दूसरी कश्ती आ जाती है, बैठ जाता है राजा, देखिए नहीं है, बैठते हैं, नहीं नहीं राजन इसमें नहीं जा सकता। महाराज ये देखिए, ये ऊपर वाली जो जगह है इसमें से एक कील जो है निकली हुई है। राजा ने कहा तो क्या कोई अपशकुन है ये? नहीं, उन्होंने बोला मेरी शर्त है कि जब मुझे पूरी पसंद आएगी तभी मैं इसमें जाऊंगा। तीसरी कश्ती आ जाती है, नहीं राजन इसमें नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है वो सूती नहीं है। चौथी में नहीं जा सकता, पांचवी में नहीं जा सकता। तो राजा भी अब राजा था, भिखारी तो था नहीं। उसने कहा महाराज आपने मुझे पागल बना के रख दिया है, क्यों नहीं जा सकते? अरे एक उसमें कील नहीं है, या उसमें थोड़ा रंग उतरा हुआ है, या उसका ढकने वाला कपड़ा ठीक नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? नदी आपको उस पार ले जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं उस बात की। तो संत ने कहा, महाराज मैं इसमें कमियां ढूंढ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि उस पार ले जाएगी, मेरा धर्म तो भी ऐसा ही है। कहीं ना कहीं तो सब धर्म में कुछ ना कुछ आपको कमी दिखेगी, पर पार सभी ले जाएंगे आपको। तो आपको कमी निकालनी है या आपको पार जाना है, ये तय आपको करना होगा। तो पहले तो तय कर लो कि जीवन से चाहिए क्या। रोते धोते रहना है, कमियां निकालते रहना है, इस कश्ती में ये नहीं उसमें वो नहीं, इस व्यक्ति में ये ठीक नहीं उसमें वो ठीक नहीं। मनुष्य तो इतनी अविद्या में जीता है, इतने अहंकार में जीता है, दर्पण में जब उसकी उसको अपना चेहरा ठीक नहीं दिखता, उसको लगता है दर्पण ठीक नहीं है, उसको लगता है दर्पण ठीक नहीं है, एक दूसरे दर्पण में जाएगा, यहां मेरा रंग ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है, ये दर्पण ज्यादा ठीक है। इतना अज्ञानता में आंखें बंद करके जो है मनुष्य जीता है। यदि आपने ये तय कर लिया कि मुझे जीवन जीना है, जीवन का भरपूर रस लेना है, इस जीवन में पूरा शरीर मिला है, स्वास्थ्य मिला है, सोचने की शक्ति मिली है, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि आपको अगले जीवन में भी ऐसा ही सब कुछ मिलेगा, तो जो प्लेट में पड़ा है पहले उसको तो चख लिया जाए। होते हैं ना कुछ लोग बफे खाने जाएंगे, जो पसंद चीज है उस थाली की ओर देखते रहेंगे, दूर से वो खाली हो रही है जाके थोड़ा और डाल लो। छोटे होते थे जब हम, तो उस समय शादी विवाह और ढंग के होते थे थोड़ा, एक हर उस पर एक व्यक्ति बैठा होता जो डाल के देता था आपको, और सबसे ज्यादा भीड़ होती थी आइसक्रीम वाली जगह पे। वो बच्चा जब लेने जाता था, बच्चा देख के पहले ही वो एक चौथाई कर देता था, जबकि खानी तो बच्चे को है। फिर वो दूसरी बार, अंकल जी आइसक्रीम, वो तू तो पहले ले गया था, अंकल जी मम्मी को चाहिए, ले बेटा दोबारा। वो जो व्यक्ति कर्मचारी है, वो कर्मचारी ना होकर कुछ में भी दुराचारी हो जाता है या कुछ और ही चारी हो जाता है, वो अपने आप को माली जो है अपने आप को मालिक समझना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जीवन आपका नहीं है, जिसने दिया है वो वापस ले लेता है, कुछ अंतराल के लिए दिया है, उस अंतराल के लिए जो दिया है उसमें आपको देखना है कि कैसे जीना है। जब छोटे होते थे तो कई बार वीडियो गेम को हम किराए पर लाते थे पूरी रात के लिए, 30 रुपये 40 रुपये जो भी उसका लगता था भाड़ा, वो लिया, सुबह तक अंगूठे नीले हो जाते थे खेल खेल के, ताकि सुबह वापस करनी है, रात में ही खेल डालो सारी, पर मन तो भरता नहीं था। ऐसे ही जीवन, ये शरीर जो है तो मंदिर पर है किराए का, थोड़े समय के लिए है, उसमें सुख से जीना पूर्णतः लगभग आपके स्वयं के हाथ में है। जब आप ये तय कर लेंगे कि मुझे जीवन जीना है, उसके बाद जब आप इस बात का निर्णय कर लेंगे कि मुझे आनंदित होकर इस जीवन को जीना है, तो फिर इस बात का स्मरण रखना होगा कि भिन्नता का नाम ही जीवन है। यदि जीवन को एक सुख का अभिन्न अंग बनाना है, तो जीवन की भिन्नता को ग्रहण करना होगा। परिस्थितियां और आसपास के बंधु जन सब निरंतर बदलते रहेंगे, उसी का नाम जीवन है। फिर गोरख धंधा ना रह जाएगा इतना, फिर सिर्फ रख धंधा हो जाएगा, वो धंधा जो समझ में आ गया फिर। हालांकि मैंने समझ वर्ड का, शब्द का प्रयोग किया है, परंतु समझने वाला कुछ है नहीं जीवन में। ना तो जीवन का कोई अर्थ है, ना आपके होने का कोई अर्थ है। पृथ्वी को, ब्रह्मांड को रत्ती भर भी, लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। हम पैदा हो गए या ना हुए, मर जाएंगे या नहीं मरेंगे, रो रहे हैं कि हंस रहे हैं, आपको छोड़ के किसी को फर्क नहीं। जिस दिन ये बात जहन में एकदम डूब जाएगी ना, उस दिन आपको लगेगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, पंख जैसे लग गए हैं। गरुड़ होता है ना जो, उसकी एक बड़ी विशेषता होती है, जब आंधी आती है तो छोटे छोटे सारे पक्षी ऐसी जगहों पर जाकर छुपने की कोशिश करते हैं जहां से वो आंधी के वेग से गिरे ना हमेशा, क्योंकि आंधी तेज होती है, पत्ते आकर लग सकते हैं, टहनी आकर लग सकती है, पेड़ गिर सकता है, कोई और चोट पहुंच सकती है, कोई पत्थर आकर लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतनी मिट्टी हो सकती है, इतने तो हल्के होते हैं पक्षी। परंतु गरुड़ जो होता है, जानते हैं वो क्या करता है? जैसे ही आंधी आनी शुरू होती है, उसकी दृष्टि बहुत तीक्ष्ण है, पैनी दृष्टि है, वो आंधी की ओर उड़ना शुरू कर देता है और ऊंचाई की ओर जाना शुरू कर देता है। उड़ता 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 वो आंधी से बहुत ऊपर उड़ जाता है। फिर जब आंधी आती है तो अपने पंख वो छोड़ देता है मारने, और वो आंधी के ऊपर है और नीचे पूरा दृश्य देख रहा है गरुड़। यदि जीवन की आंधी से निकलना है तो उससे ऊपर उड़ना होगा, क्योंकि आप कितने ही बलवान क्यों ना हो, आंधी की ओर यदि आप जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आंखें बंद कर लेंगे ना, कानों में, बालों में, शरीर में, नाक में, मुंह में, बाकी सब जगह मिट्टी जाएगी। वो तो नहीं रोक सकते ना, कितने ही बलशाली क्यों ना हो आप। आंधी से ऊपर तभी उठेंगे यदि हल्के हैं, यदि उड़ान भर सकते हैं लंबी, यदि भार ही इतना ज्यादा है शुतुरमुर्ग जितना फिर कहां से उड़ान भर लोगे फिर तो नहीं कर सकते ना, गरुड़ ही बनना होगा। यही जीवन को जो एक समझना कि जीवन समझ में नहीं आ सकता, दूसरा समझने की आवश्यकता भी नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता भी नहीं है, इसका रस लिया जाए गुठलियां गिन के वास्तव में ही क्या करोगे, ना जमीन है, ना बगीचा है, ना खेती का अनुभव है, आम खाओ, रस लो और वर्जिश करो, व्यायाम करो और शरीर को स्वस्थ रखो। तो आज के लिए इतना ही, विषय और वाणी को विराम देते हैं, बाकी कल करें।